हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अर्णव की पलकें भीग गईं। मन ही मन सोचने लगा कि अगर वृशाली ने उसे उस जगह के बारे में नहीं बताया होता जहाँ अक्सर वो वीकेंड में पार्टियाँ करने जाते, तो शायद वो वक्त पर धृति तक नहीं पहुँच पाता, और अगर ऐसा होता तो आज सब खत्म हो जाता। ये सोचकर ही भय से उसकी रूह कांप उठी और मन बेचैन हो गया। अर्णव ने धृति की हथेली को अपने लबों से छूते हुए उसे अपने सर से लगा लिया। देखते देखते रात के 10 बज गए। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई थीं। सादगी से पूजा करके घर की महिलाओं ने अपना व्रत खोला था। अर्णव ने सबको डिनर करके आराम करने भेज दिया था, क्योंकि सबके लिए आज का दिन काफी हेक्टिक रहा था। खुब अब भी धृति के पास उसका हाथ थामे बैठा था। नींद में धृति की बंद पलकों के सामने आज का सारा दृश्य घूम गया। जैसे ही विवान उस पर झपटा, धृति ने चीखते हुए अपनी आंखें खोली और अर्णव का हाथ भी झटक दिया। नन्नन, घबरा कर वो उठकर बैठ गई। दोबारा चिल्लाने ही वाली थी कि अर्णव की चिंता भरी आवाज उसके कानों से टकराई। धृति, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों गई? कोई बुरा ख्वाब देखा क्या तुमने? अर्णव की आवाज सुनकर धृति ने डबडबाई आंखों से उसे देखा। आंखों में आंसू होने के कारण उसे अर्णव का चेहरा धुंधला नजर आया, जो धीरे धीरे साफ होने लगा। उसे सामने देखते ही धृति उसके सीने से लिपट गई, अपनी बाहों को उसकी पीठ पर जकड़ते हुए बदहवास से रो पड़ी। अर्णव पहले तो चौंक गया, फिर उसके आंसुओं की वजह समझते हुए उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके पीठ को सहलाने लगा। सब ठीक है धृति, तुम हमारे घर में हो, हमारे कमरे में। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, कोई तुम पर अपनी बुरी नज़र नहीं डाल सकेगा। विवान अब कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे पास, रोना बंद करो। अर्णव ने बड़े ही प्यार से उसे संभाला। धीरे धीरे धृति शांत हुई तो अर्णव ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। अब रोना नहीं, तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास रहिए। धृति ने अर्णव की बाँह को पकड़ लिया और इनकार में सर हिलाने लगी। धृति, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी दवाई लेनी है तुम्हें, उससे पहले कुछ खाना जरूरी है, बस 5 मिनट में आया। तुम घबराओ मत, तुम हमारे घर में सुरक्षित हो। धृति अब भी उसे जाने नहीं देना चाहती थी। अर्णव ने प्यार से उसके माथे को चूमा, फिर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो धृति खुद में सिमटी हुई सी बैठी उसी दिशा में देखती नजर आई। अर्णव उसे देखकर हौले से मुस्कुराया और ट्रे लेकर उसके पास ही बैठ गया। धृति ने ट्रे देखा, फिर परेशान निगाहों से अर्णव को देखने लगी। मेरा आज व्रत है, पर मैंने अभी तक पूजा नहीं की, ऐसे कैसे खा सकती हूँ मैं? पूजा बस एक रिवाज है, चांद को देखने के बाद पति के हाथों व्रत खोलने का नियम है, तो यहीं से चांद देख लो और उसके बाद ये खाओ। अर्णव ने बड़ी ही मोहब्बत से उसे समझाया और एक निवाला उसकी ओर बढ़ा दिया। धृति ने ग्लास वॉल से दूसरी तरफ आकाश में चमकते चांद को देखा, फिर मुंह खोल दिया। अर्णव ने उसे खाना खिलाकर दवाई दी और सहारा देकर आराम से लिटा दिया। बचा हुआ खाना खुद खाया। जब ट्रे रखकर लौटा तो धृति टकटकी लगाई सीलिंग को घूर रही थी। क्या हुआ, सोई क्यों नहीं, अब नींद नहीं आ रही? नहीं, डर लग रहा है, धृति ने निगाहें झुकाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्णव धृति के पास ही लेट गया और एहतियात के साथ उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अब नहीं लगेगा डर, सो जाओ। धृति ने पलटकर कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें मूंद ली। अजीब बात थी कि वाकई अर्णव के सानिध्य ने उसे हर डर से आज़ाद कर दिया था। ये दूसरी बार था जब अर्णव ने उसे ऐसी सिचुएशन से बचाया था। दोनों ही बार जिस तरह अर्णव उसके लिए लड़ पड़ा था, सोचते हुए धृति की आंखें भीग गईं। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर गए थे। घर में किसी ने भी अर्णव या धृति से कोई सवाल नहीं किया था। सबसे छिपकर माधुरी उसे नहाने और कपड़े बदलने में मदद कर देती थी। खाने पीने और दवाइयों के साथ उसके आराम का पूरा ख्याल रखता था अर्णव। धृति के लिए मोहब्बत और परवाह उसकी आंखों और व्यवहार में साफ झलकता था। माधुरी ने उसे सब बताया था कि कैसे अर्णव सृष्टि को देखते ही पहचान गया, जबकि वो सब तो धोखा खा गए थे। उसके बाद कैसे आधा दिन पागलों की तरह बदहवास सा उसे ढूंढता फिरता रहा। उसने कोशिश की थी अर्णव की मोहब्बत पर उसे विश्वास दिलाने की, पर धृति पलटकर कुछ कहती ही नहीं थी। घर में सबका व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। एक बहुत बड़े हादसे से बचकर निकलकर आई थी वो, और सब बहुत परवाह करते थे उसकी, पर धृति कुछ खामोश सी रहने लगी थी। शायद कुछ था उसके मन में जिससे सभी अनजान थे। अर्णव और बाकी सबकी केयर से वो जल्दी ही ठीक हो गई थी। न्यूज से उसे पता चला विवान किडनैपिंग अटेम्प्ट टू रेप जैसे कई चार्जेस के साथ जेल पहुंच चुका था। उसके खिलाफ खुद वृशाली ने गवाही दी थी। विवान के दोनों हाथ की हड्डियां टूट चुकी थीं और अब वो अपनी सजा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अर्णव ने उसके बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। सृष्टि ड्रग्स की स्मगलिंग के जुर्म में जेल पहुंच चुकी थी। उसे नशीली हालत में एक नाइट क्लब में पाया गया था और साथ ही काफी भारी मात्रा में ड्रग्स भी मिला था। उसका चेहरा भले ही दुनिया के सामने नहीं आया था और उसकी एकमात्र वजह धृति थी, क्योंकि उसका चेहरा धृति से मिलता था, पर जिंदगी की ओर जाने वाले सभी रास्ते उसके लिए बंद हो चुके थे। कई लड़कों ने उसके खिलाफ फ्रॉड और सेक्सुअली अब्यूज करने का केस भी किया था। ये वही लड़के थे जिन्हें कभी उसने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उनका फायदा उठाया था। सृष्टि अवस्थी की कई वीडियो वायरल हुई थी, पर किसी में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सृष्टि बीते दिनों सुर्खियों में रही थी और उस पर इन सब के आगे विवान के साथ मिलकर धृति की किडनैपिंग के चार्जेस भी लगे थे और अब उसका छूटना नामुमकिन था। छूट भी जाए तो जितनी बदनामी उसकी हो चुकी थी उसके लिए समाज के बीच एक पल भी सांस लेना दूभर हो जाएगा। जो कभी उसने आकाश के साथ करना चाहा था उससे बदतर अर्णव ने उसका हाल किया था। धृति के साथ जो वो करना चाहती थी उसकी सजा भी उसे दे चुका था। उसकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था उसने, जिसमें वृशाली ने काफी मदद की थी उसकी। धृति सब जानकर भी खामोशी अख्तियार किए बैठी थी। इन दिनों अर्णव ने उसका ख्याल तो बहुत रखा था, पर दोनों के बीच बातें ना के बराबर ही हुई थीं। अर्णव का मन आत्मग्लानी से घिरा था और वो हिम्मत नहीं कर पाता था उससे नजरें मिलाने की। धृति के गुनहगारों को सजा दिलाने के बाद अब उसे अपनी सजा का इंतजार था और धृति के लिए उसके यहाँ रहने की वजह खत्म हो चुकी थी। सृष्टि जेल में थी और वो आज़ाद, फिर भी अर्णव के साथ उसी घर में रह रही थी। आजकल अर्णव के सोने के बाद घंटों उसे खामोशी से तकते हुए जाने क्या सोचती रहती थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था बस वही जानती थी। आज घर में पार्टी थी, दिवाली प्लस उनके न्यू लॉन्च की सक्सेस की कंबाइंड पार्टी थी, जिसकी तैयारी बीते 2-3 दिनों से चल रही थी। पार्टी मेंशन की बड़ी सी लॉबी में रखी गई थी और सब तैयारियां भी वहीं करवाई गई थीं। फूड मेन्यू में इंडियन, कॉन्टिनेंटल, ओरिएंटल सभी तरह की डिशेस को रखा गया था। कॉकटेल मॉकटेल का भी बढ़िया इंतजाम किया गया था। स्पेशल शेफ्स आए थे और साथ ही वेटर्स को भी हायर किया गया था। खाने पीने का इंतजाम बाहर लॉन्च में किया गया था। पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऑफिस स्टाफ्स, पार्टनर्स और बिजनेस रिलेटिव्स सभी शिरकत करने वाले थे। इस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन धृति थी, धृति अर्णव सिंह रायजादा, जिसने पहली ही बाजी में जीत अपने नाम लिख ली थी। उसके बनाई डिजाइन्स की मार्केट में बहुत डिमांड थी। इसके अलावा वो अर्णव की वाइफ थी, जिससे मिलने के लिए सभी काफी एक्साइटेड थे।
माधुरी 2 दिन से धृति को उस पार्टी के लिए रेडी कर रही थी। बड़े बड़े लोगों से मिलना था तो प्रेजेंटेबल बनना था। आज भी वही धृति को तैयार कर रही थी। अर्णव रेडी हो चुका था, पार्टी भी शुरू हो चुकी थी। लगभग सभी गेस्ट्स आ चुके थे और कुछ आ भी रहे थे। परिवार के सभी लोग वहां मौजूद थे और अपने मेहमानों से मिल रहे थे। उस बड़े से हॉल में हल्की झिलमिलाती रोशनियों के बीच, हल्के म्यूजिक के बीच सब स्टार्टर्स और ड्रिंक का मजा लेते हुए आपस में मग्न थे। कुछ देर बाद अचानक ही सारी लाइट्स डिम हो गईं और तेज रोशनी सीढ़ियों पर बिखर गई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सीढ़ियों पर खड़ी धृति और अर्णव आज लाइमलाइट में थे और आकर्षण का केंद्र पार्टी की जान बने हुए थे।